رسول پاک کی دکھیا
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آپ کے سامنے اپنے ڈاکٹرز اور حکیم صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کئی ایسے بڑے واقعات اور بڑے سانحات رونما ہوتے ہیں جن کی وجہ اگر معلوم کی جائے تو وہ بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بڑی ندامت کی وجہ ایک ایسا گناہ ہوا کرتا ہے جس کو بظاہر ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بہت بڑی کامیابی اگر حاصل ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے ماضی میں جایا جائے تو ایک بہت چھوٹا ایفرٹ ہوتا ہے جس کو کرنے سے اس کامیابی کی طرف بندہ گامزن ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بڑی بیماری یا کوئی بڑا معاملہ ایسا درپیش آئے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے، اگر اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو کوئی ایسی چھوٹی نیگلیجنس ہوتی ہے، کوئی ایسی لاپرواہی ہوتی ہے جو ہم نے زندگی میں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑے سیلاب کی وجہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا شگاف ہوا کرتا ہے، یعنی چھوٹی ہی لاپرواہی، اس کو ہم بہت معمولی سا شگاف سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ایک بڑے سیلاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیماری کا تعلق ہے، کوئی بڑا مرض جو کسی کو اللہ نہ کرے لاحق ہو جائے، اگر دیکھا جائے تو وہ کسی چھوٹی شکل میں ہی رونما ہوتا ہے، کسی ایسی شکل میں رونما ہوتا ہے کہ جس کی طرف عمومی طور پہ توجہ نہیں جاتی، اور اس کے بہت سارے معاملات ہمارے روزمرہ کے معاملات، ہمارے کھانے پینے کے معاملات، ہمارا پانی کا استعمال، ہماری غذا کا استعمال، ہماری ڈائٹ پراپر نہ ہونا ہی اس کی وجہ بنتی ہے۔ اسی زمین میں ہمارا آج کا موضوع ہے پانی۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پانی ہی ایک صحت مند جسم کے لیے بنیاد بنتا ہے، اور اگر پانی کا استعمال پراپر مقدار میں نہ ہو یا پراپر پانی استعمال نہ کیا جائے تو ایک اچھا خاصا صحت مند انسان بیماری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع پانی ہے، اور پانی کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کے کیا فوائد ہیں اور پانی ہی کے کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ عزوجل آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلمان، تو انشاءاللہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع پانی، اور میں نے کچھ کوشش بھی کی کہ سمجھانے کی کہ کس قدر پانی کی امپورٹنس ہے، تو اگر ہم پانی پر گفتگو کا آغاز کریں تو کہاں سے ابتدا کرنا چاہیں گے؟
سر، بس پانی کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے باڈی کی، انسان کا جو جسم بنا ہوا ہے اس کو اگر ہم سٹڈی کریں گے تو 65% باڈی جو انسانی جسم ہے وہ پانی ہے۔
اچھا،
دماغ ہے اور دل ہے، یہ آلموسٹ 75% پانی کا بنا ہوا۔ اس کے بعد جو ہڈیاں جو بظاہر لگتی ہیں بہت سخت ہیں، 13 سے 15% یہ پانی آئے گا۔
पानी है इसमें।
पानी खून जो है पूरा जिसम के अंदर भाव हो रहा होता है 90% इसके अंदर ये पानी होता है,
पानी सर्कुलेट कर रहा होता है।
तो ऑल सारी बॉडी इंसान का जिसम जो है वो 65% पानी के ऊपर है,
पानी के ऊपर है।
और पानी जिसम से डेली बेसिस के ऊपर अखराज भी हो रहा होता है,
ठीक,
वाया जैसे स्टूल से यूरिन पास हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, सांस लेने में मुस्तकिल पानी आपकी बॉडी से लूज हो रहा होता है,
ठीक है।
तो जो लूजिंग हो रही होती है बॉडी से, जो पानी बॉडी से जा रहा होता है, तो इसको रिप्लेनिश यानी इसको वापस बॉडी के अंदर लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पानी से रिलेटेड ही किडनी का जो एक निजाम मौजूद है, किडनी के फंक्शंस को अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो किडनी ऑल टुगेदर वर्क करती है पानी के ऊपर। आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है, बॉडी को कितना पानी रिक्वायर्ड है, बॉडी को कितने सॉल्ट रिक्वायर्ड है, ये सारी सेंसिंग कर रही होती है किडनी। पानी से रिलेटेड अभी हमें प्यास क्यों लगती है,
ठीक है,
अगर पानी की अहमियत जिस्म के अंदर नहीं होती तो प्यास का सिस्टम नहीं होता,
नहीं होता।
अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग के अंदर सेंसर लगे, सेंसर बोल देता हूँ जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं बेसिकली,
ठीक है।
दिमाग के अंदर एरिया होता है थैलेमस, उसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं,
ठीक है।
ये सेंसर होते हैं, ये बॉडी के अंदर आपके पानी को डिटेक्ट करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है। अब जैसे पानी कम होने लगता है तो आपको प्यास की कैफियत महसूस होती है,
गले में खुश्की वगैरह महसूस होती
है, वो तो ड्राइनेस हो जाता है, प्यास लगती है, साइकोलॉजिकल भी है वैसे भी है,
वैसे
फाइंडिंग भी मिलती है। तो पानी हमको पीना होता है,
बिल्कुल।
तो ये दो चीजों को इंडिकेट करना मीन्स कम नियत ये थी कि एक पूरा सिस्टम यानी थर्स सिस्टम, प्यास का सिस्टम, रिसेप्टर सिस्टम, सेंसर सिस्टम, किडनी सिस्टम, ये सारा बना हुआ है पानी के लिए,
पानी के लिए।
अब पानी हम पीते हैं तो मजीद इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कस करेंगे कि पानी पीते चले जाएंगे, पानी का इस्तेमाल कितना करना है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ पानी पीने से, पानी को मेंटेन रखने से, प्रॉपर लेने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और बचते आ भी रहे होंगे,
ठीक है।
डॉक्टर साहब मजीद आप इस पर,
जैसे आपने फरमाया कि पानी जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अगर हम ओवरऑल देखें तो पानी बेसिकली हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और उसको देखेंगे अगर हम कुरा अर्थ पे नजर मारते हैं तो हमारा तकरीबन जमीन जो है हमारा तकरीबन 70% जो है पानी पे मुहित है, 30% खुश्की पे है। तो अगर आप उसको भी देखते हैं तो पानी को ओवरऑल भी देखते हैं तो पानी की इम्पोर्टेंस यूं बढ़ जाती है। पानी हमारी एक जिंदगी एक लाजमी जुज बना हुआ है, उसके बगैर जो है ना मुमकिन नहीं है जिंदगी। अब उस पानी का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, उसको यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और हमारे पास अवेलेबिलिटी किस तरीके से मिलती है वो पानी,
ठीक है।
बाज सूरतों के बाज जगहों के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में पानी मिल जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का मिनरल वाटर जो कहते हैं मिल जाता है आपको, जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप चल जाएंगे एक अच्छा साफ सुथरा पानी मिल सकता है आपको। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर शहरी इलाकों की तरफ आते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ रीजंस हैं उसके अंदर, जिसमें आबो हवा भी शामिल है, जिसके अंदर आपका सैनिटरी का निजाम भी शामिल है। तो वो पानी उस अहमियत के साथ जो हमें रिक्वायर्ड होती है उस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता
पानी। डॉक्टर साहब उस क्वालिटी के मिकदार का,
एग्जैक्टली
पानी तो रिक्वायर्ड है हमें,
हाँ नहीं
जो क्वालिटी
हमें चाहिए होता है बेसिकली वो हमको नहीं मिल पाता है। अगर हम बेसिकली देखें तो पानी एक वाहिद शय ऐसी है इस पूरा अर्थ पे जो तीन फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, यानी कि आपको ठोस फॉर्म में भी मिल जाएगी, आपको माया फॉर्म में भी मिल जाएगी, गैस फॉर्म में भी मिल जाएगी।
जैसे ये बर्फ की फॉर्म में भी पानी
ठोस फॉर्म में मिल जाएगा आपको और माया फॉर्म में भी मिल जाएगी आपको और
खुद पानी
गैस के फॉर्म में भी मिल जाएगी आपको। जैसे आपके वेपराइज
स्टीम लेते हैं तो ये खुद
पानी होता है, इवन स्मोक जो आती है आपकी फोग वगैरह जो होती है वो भी पानी होती है। तो ये तीनों फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। हमारे जहन में पानी की इतनी ज्यादा अहमियत अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है, बस एक एक जिंदगी गुजारने की जरूरत का हिस्सा रखा हुआ कि प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं पियेंगे। और होता ये चाहिए कि प्यास लगने से पहले आपको पानी का रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरी कर ले।
मतलब आप अपनी एक रूटीन इस तरह बनाएं कि आपने पानी इतना पीना है इससे पहले कि आपको तलब महसूस हो।
जी
देखिए अभी ये सिलसिले करने का मकसद ही नियत भी यही है कि पानी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, बताना मालूमात से। पानी सिर्फ आपका सिर्फ ये प्यास बुझाने से रिलेटेड ही ताल्लुक नहीं है,
बिल्कुल।
जिस्म का कोई ऐसा ऑर्गेन और सिस्टम ऐसा नहीं है जो पानी
जहां पानी के रिक्वायरमेंट ना हो।
अभी जैसे पानी अगर ना पी रहे होंगे तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन वो भी इंशाल्लाह भी अर्ज करते हैं,
ठीक है।
अभी इंसान के जिस्म के अंदर जैसे खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद खाने को हजम होना, अब हजम होने के लिए जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस कहलाते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन सब के लिए पानी रिक्वायर्ड है।
बिल्कुल,
अगर पानी नहीं होगा तो खाना भी हजम नहीं होगा,
हजम नहीं होगा।
बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर बेस्ड विटामिन होते हैं, तो वो पानी की वजह से डाइल्यूट होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। मैं इसके बारे में डॉक्टर साहब जैसे अभी पढ़ रहा था, काफी इसमें कोशिश की, तो मोटी तीन चीजें जो है ना शर्फ भाई, बहुत तीन चीजें जो मेजर है ना, वो मेरे को समराइज्ड हुई कि जैसे पानी के इस्तेमाल से इंसान की बॉडी तो ऑलवेज एक्सपोजर में रहती है टॉक्सिन के, जब कुछ खाया तो टॉक्सिन या वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन गए, अगर ये बॉडी में जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो ये कैंसर, कार्सिनोजेनिक, टॉक्सिक हो सकते हैं। मेन फंक्शन ये टॉक्सिन का रिमूव करना। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन ये होता है कि पानी आपका बॉडी जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन कर रहा होता है। तीसरा एक अजीब सा फंक्शन है, लेकिन इसको डिटेल स्टडी करके आया हूं मैं, कि इंसान का जैसे भी मैंने बताया कि 80% जो ब्रेन है वो मेड ऑफ वाटर है, पानी का बना
पानी है इसके अंदर।
तो कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव फंक्शन, याददाश्त का फंक्शन या दिमाग के काम करने की सलाहियत, ये ऑल डिपेंड्स करती है द अमाउंट आप कितने परसेंट हाइड्रेटेड है।
एग्जैक्टली,
तो ये तो तीन ऐसे मेजर मोटे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो गए, जो बॉडी के अंदर से टॉक्सिक यानी जहरीले जो चीजें होती हैं उनका निकल जाना, प्लस फिर दिमाग की काम करने की सलाहियत, और तीसरा जो था आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना।
इसमें सलमान भाई दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने तीन चीजों की तरह,
ये तो समझे वो स्टडी डिटेल करी,
लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे तमाम के तमाम सिस्टम्स जितने भी हैं बॉडी के,
जैसे सिस्टमिक में भी आ जाएं तो आप बताते रहेंगे,
तमाम के तमाम सिस्टम है, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम है, चाहे आपका वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तमाम के तमाम सिस्टम्स के अंदर जो है बॉडी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है, और उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप जैसे फर्ज करें कि आप रीजन सिस्टम की तरफ अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया कि आप पानी पीते हैं तो आपके वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के जो है
वो निकल आउट हो जाते हैं, तो होता है
और स्टूल के जरिए वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, और उससे ये है कि आप बहुत सारी टॉक्सिसिटी से बच जाते हैं, बॉडी के अंदर जो आपके जहरीले मवाद जमा होने के अंदेशे होते हैं उससे काफी हद तक बच,
पानी की कमी से मेरे ख्याल में जो कब्ज का मर्ज,
ये पानी नहीं पी रहे ना तो ये पानी की कमी हुई, जैसे डॉक्टर साहब अभी बयान फरमा रहे थे, अब ये किडनी के से जो जहरीले मवाद यूरिक एसिड है
वो प्रॉपर खराज नहीं कर पाते, निकल नहीं,
एक्युमुलेट हो जाता बॉडी में, उसको तो फ्लश आउट होना होता
है। इसमें फंक्शन यही होता है कि आपका जो पानी होता है, पानी पीते हैं ये टॉक्सिन्स को जमा करता है, उसके बाद किडनी के अंदर अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन निजाम उसका फिल्ट्रेशन का दिया हुआ है कि लाखों की तादाद के अंदर उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, और एक लीटरों की बुनियाद के ऊपर जो वहां पे फिल्टर होता है आपके जो पानी है वेस्ट मटेरियल जो वो फिल्टर होता है, और वो थ्रो यूरिन जो है ना आपका एक्सपेल आउट हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर वो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है या टॉक्सिन मटेरियल है वो बॉडी के अंदर अगर रुक जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है, तो आप सोचेंगे आप किन किन परेशानियों में मुबतला हो सकते हैं, और मालूमात देखेंगे हमें ये चीजें नजर भी आती है, क्योंकि किडनी फंक्शन जिनका डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, किडनी फेल्स हो जाती है बाज़ औक़ात, उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो टिश्यू में सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जमा हो जाता है स्किन के अंदर से ऊपर के सामने आ जाता है,
स्वेलिंग आ
जाती है,
पांव सूज जाते हैं,
बहुत सारी वजूहात नजर आ जाती हैं। तो पानी इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली होता है ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि सिर्फ एक प्यास का इंतजार किया जाता है कि प्यास अगर होगी तो प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे। हमने पिछले सिलसिलों में भी काफी सिलसिलों में हमने हाईलाइट ये किया कि देखिए बाइक में पेट्रोल खत्म होने का इंतजार नहीं करते हम लोग, पहले से
पेट्रोल डलवा के रखते हैं,
पहले से डलवा के रखते हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर हम क्यों हमारी बॉडी में पानी कम होने का अंदाजा है, पानी आपका अगर कम हो रहा है बॉडी के अंदर, कम होने के बाद आपकी वो प्यास का एलिमेंट सामने आ रहा होता है, तो आप कम होने ही ना दे
उस दौरान आपके जिस्म को जिस परेशानी से गुजरना पड़ता है। मिसाल आपने जैसे मोटरसाइकिल की दी, अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा और पेट्रोल पंप दूर होगा तो आप सोचें आपको कितनी दूर तक उसको परेशानी में लेके जाना पड़ेगा।
डेफिनेटली, अब जैसे इसी तरह है, अगर आपको फर्ज करेंगे अगर आप पानी नहीं पीते प्रॉपर और आप वॉक कर रहे हैं तो आप शायद 10 मिनट भी वॉक नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने पानी वगैरह सही पिया हुआ होगा तो आप अच्छी तरीके से वॉक भी कर सकेंगे। अब जैसे आजकल का सीजन है, जैसे कोल्ड थोड़ा सा सीजन होता है कि थोड़ा सा ठंड है, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी है, दरमियाना सीजन है, इसको बाबुल मदीना में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें लोगों का रुझान बहुत कम हो जाता है पानी पीने का, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
प्यास नहीं लग रही।
उमूमी तौर पर ये हमारे पास क्लिनिक में, मेरे पास आजकल के केसेस ये आ रहा है कि काफ मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है,
काफ मसल्स
पिंडलियों के दर्द,
अच्छा,
पिंडलियों में जो है ना वो तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और पट्ठों में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, तो पहला मेरा सवाल उनसे ही होता है कि पानी कितना पी रहे हैं,
पानी कितना पी रहे हैं।
तो 99% ये जवाब मिलता है दो से तीन गिलास, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है। तो अब अगर ऐसी सूरत के अंदर पानी इटसेल्फ खाली एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती है, सही पानी अगर आपको मिलता है तो
ये भी एक बड़ा मसला, ये भी तो सही पानी का एक बड़ा मसला है। सही पानी की तकरीबन एक मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था मदीसा के नाजरीन, तकरीबन 2 बिलियन लोग जो है वो आलूदा पानी इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, और तकरीबन 5,02,000 के करीब सालाना अमवात पानी की वजह से होती हैं। कुछ कॉल्स भी हमारे पास, दो कॉल्स दे दीजिए।
हजरत मेरी बच्ची है 5 महीने की, इसके दिल में पैदाइशी सुराख है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर उसके फेफड़ों में जा रहा है, इसकी वजह से उसको इन्फेक्शन रहता है। अगर उसके लिए कोई मदनी इलाज कोई नुस्खा हो तो इनायत फरमा दीजिए।
शफा कामिल आजला नाफिया अता फरमाए, इंशाल्लाह इसका जो रूहानी इलाज होगा हमारे खलील भाई जैसे हमें ज्वाइन करते हैं हम आपको उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल
डॉक्टर साहब और किंग साहब बैठे हुए, बेटी का एक मसला पूछ रहा, मेदे का प्रॉब्लम था। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, हाफिज मोहम्मद सलीम। उसको मेदे का 3 साल से प्रॉब्लम है जी, 3 साल हो गए हैं, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, टेस्ट सारे सही आते हैं, कोई चीज खाती है फौरन निकल जाती है, पहले पेन होती है शदीद और उसके बाद जनाब वो वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है और फिर वो जनाब सब कुछ निकल जाता है। भाई वेट बहुत रिड्यूस हो गया जनाब, 18-20 किलो वजन कम हो गया हुआ।
ठीक है जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब इनमें इन्होंने आखिरी के जो कॉलर है एज नहीं बताई, एज सुनी आपने क्या?
18-20 किलो वजन कम हो गया, इट्स मीन कि यंग एज है,
बहुत यंग एज है,
यंग एज है या मिडिल एज में होगा। 18-20 किलो वजन कम हो जाना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इतना आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। अब ये थोड़ा क्लियर इसमें कर दिया करें मदनी चलन के नाजरीन की, अगर वो आया जीपीएस को दिखा रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट अब तक कराया जीपी से कराया या स्पेशल पर्सन से करवाया,
ठीक है। ये यही बता दें कि जैसे डॉक्टर से रहा में है कि नहीं है, लेकिन अभी एज इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट है इस उसमें,
ठीक है। नहीं अब यहाँ से थोड़ा सा हमको हिंट ये मिलता है कि 18-20 किलो अगर वजन कम होने की
नहीं, ये तो एक बड़ी खतरनाक अलामत,
ये बहुत खतरनाक अलामत है, तो इट्स बेटर के किसी भी गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जो है ना रब्ता कर ले, और स्पेशल गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रब्ता कर ले ताकि इसका प्रॉपर हल निकल सके। मे बी पॉसिबल कि उनको मेदे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मे बी पॉसिबल IBS का कोई मसला हो, मे बी पॉसिबल कोई और प्रॉब्लम निकल आए, लेकिन यह है कि उसको कंट्रोल कर लें, उसको चेक कर लें, मालूमात कर लें, डायग्नोज कर लें प्रॉपर तरीके से ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन इतना सिग्निफिकेंटली अगर 18-15-18 किलो वजन कम करने की बात कर रहे हैं तो वो
बहुत ज्यादा तश्वीश की बात है। नाज़रीन जब भी आप मदनी चैनल के सिलसिले में कॉल किया करें, खासतौर पर तिब्बी इलाज से मुतालिक, तो अपनी उम्र जरूर बताया करें ताकि हमारे जो डॉक्टर साहबान है वो प्रॉपर अंदाज से आपको उसी मुताबिक
एज
दे सके,
एज और बीमारी का अगर मुमकिन हो सके तो
प्रॉपर अंदाज में बताएं,
ड्यूरेशन
बताया करेंगे कितने अरसे से ये बीमारी आपको ला रही
है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आया अब इसमें ये भी देखना है कि इन्होंने डॉक्टर्स की हिदायत को प्रॉपर फॉलो
किया या नहीं किया,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे यहाँ जो है डॉक्टर्स की हिदायत को प्रॉपर फॉलो नहीं करते। कोई डॉक्टर साहब ने अगर कहा है कोई चीज यूज करने के लिए कि यार अपने एक माह इस्तेमाल करनी है, वो उसने एक हफ्ते इस्तेमाल करके उसको सिग्निफिकेंटली रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो फिर वो स्विच ओवर कर देता है किसी और डॉक्टर
से। सर अभी चूंकि इनकी इन चारे पेशेंट है इनकी एज कम है, यंग एज है, तो मुमकिन है हो सकता है कि कोई लिवर वगैरह भी इन्वॉल्व हो रहा हो,
जी बिल्कुल
कमजोरी लग रही हो, ये ओपिनियन ले लें,
लेकिन इनको बड़ा इस पे कॉशियसली जो है इसको
यंग एज फीमेल है इसको दिखा देना
चाहिए,
बिल्कुल
ट्रीटमेंट कर।
दूसरे जो कॉलर है ये इनका VSD का मेरे ख्याल से केस है, 5 माह
जी, ये VSD का केस है, बेसिकली रूहानी इलाज, डेफिनेटली VSD के लिए कार्डियोलॉजिस्ट रिव्यू कर रहे होंगे, जो भी सुख सूरत होगी वो यकीन को गाइड
या मुमन तो हर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है, इसके
कॉम्प्लिकेशन ठीक हो सकता है, इलाज ये इलाज करवाया जा सकता है कि भी कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट में जाके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। और इसके हवाले से जो रूहानी इलाज है इंशाल्लाह खलील भाई आएंगे तो वो भी
इंशाल्लाह। दो कॉल और है मजीद हमारे पास, वो ले लेते हैं इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम अल्लाह बरकातु।
मैं हाफिज मोहम्मद सलीम लाहौर से बात कर रहा हूँ, अपनी बेटी की प्रॉब्लम के लिए जरा पूछना चाह रहा हूँ, मेदे का प्रॉब्लम है। शुक्रिया।
वही मेदे का प्रॉब्लम बताया। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
डॉक्टर साहिब से यह सवाल था कि रोजाना एक नॉर्मल बंदे को पानी कितने गिलास पीना है, औरत हो तो औरत को कितने गिलास पीना है, अगर बच्चा है छोटा बच्चा है तो उसे कितने गिलास पानी पीना चाहिए।
ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं जी डॉक्टर साहब।
जैसे पानी के हवाले से अभी हम अर्ज कर रहे थे
जी,
पानी जैसे एज के हिसाब से और वजन के हिसाब से और अपने प्रोफेशन के हिसाब से पानी की मिकदार को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे बच्चे हैं तो उनको एक लीटर की मिकदार है, जैसे चार गिलास सफिशियंट होता है। आपको बड़ी एज का है जो आउटडोर काम कर रहा है, धूप वगैरह के अंदर एक्सपोजर है, बाहर का काम करता है, उनको तो 3 से 4 लीटर पानी भी पीना जरूरी हो सकता है। कैलकुलेट ऐसे भी करते हैं कि जितना आपको पसीना आ रहा है
उतना पानी
से भी कैलकुलेट कर देंगे। फीमेल्स के अंदर जो है पानी लाजमी है, मैंडेटरी है कि पानी
घर में भी जब काम होता है,
किचन के अंदर जब काम हो रहा है
वगैरह
पसीना आ रहा होता है तो उतना बॉडी लॉस हो रहा होता है।
बिल्कुल,
पानी की कमी की एक अलामत ये भी होती है कि आप अपने जैसे घर के अंदर टेस्टिंग इस तरह भी कर लें कि पेशाब का कलर किस तरह का आ रहा है।
ठीक है,
एक पेशाब में स्मेल है, बदबू है,
जलन है,
या उसके बाद अब जलन आ गई।
ठीक है,
तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी सिवियरली डिहाइड्रेटेड है।
ठीक है,
अब इसको रूल आउट कर कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे जैसे कि हमने एक लीटर पानी पिया तो उसके बाद फौरी तौर पर पेशाब आ जाए जरूरी नहीं है।
ठीक है,
तो करीबन 1.5 से 2 घंटे जितना हम पानी पीते जाएंगे तो पेशाब का कलर भी उतना नॉर्मल होता चला जाएगा और उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी
और स्मेल भी उसमें जो है
वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है कि जितना हमने पानी पिया 1.5 लीटर 2 लीटर ये पूरा बॉडी में कंज्यूम हो गया, अब जो एक्स्ट्रा जायद पानी था वो फ्लश आउट हो गया। इट मीन्स कि आपकी बॉडी को पानी बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरी है। अब जैसे निजाम हजम के ऊपर सिर्फ ले
कॉन्स्टिपेशन में ही आपने डायग्नोस करने के लिए मुझे शरण हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा जबरदस्त आपको फॉर्मूला दे दिया है, तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे और इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके अंदर पानी की कितनी जरूरत है।
अभी जैसे निजाम हजम के हवाले से हम यूँ ले लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कब मोस्ट कॉमन है, कॉमन पेशेंट बहुत आ रहे होते हैं, इनसे हिस्ट्री ली जाए तो इनकी हिस्ट्री में भी ज्यादातर ये मिलता है कि अगर आप ये तो अगर ये तो सेकेंडरी स्टेज पे चले आते हैं, डॉक्टर के पास जब आते हैं तो दवा ले लेते हैं, लेक्सेटिव ले लेते हैं, लेकिन मेरी तरफ से लेक्सेटिव इतने रिकमेंडेड नहीं होते। मैं ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि आप लाइफस्टाइल चेंज वगैरह करके पानी हाइड्रेशन मेंटेन करके कॉन्स्टिपेशन को आप रिजोल्व
कर सकते हैं।
अगर लेक्सेटिव के इस्तेमाल के ऊपर आ गए आप, तो निजाम कुदरत का कुछ इस तरह का है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है जहां से पास आउट होना होता है, लग्जेटिव जितने भी होते हैं जो कब्स कुशा टेबलेट जो बोलते हैं, ये उस प्रोसेस को ना स्टिमुलेट कर देती है,
इससे आपकी आंतें भी कमजोर हो जाती हैं।
वो स्टिमुलेट होता है ना तो वो अब फिर आप उसके आदी हो जाते हैं,
आदी हो जाते हैं।
जब तक वो स्टिमुलेशन नहीं आएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, कोलोन के अंदर, तो फिर जाहिर है तो फिर आपको
नहीं होगा। जैसे आपने हाईलाइट किया है इसमें बहुत अच्छी बात की है आपने कि उम्मीद तौर पे कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग जो है लग्जेटिव वगैरह।
डॉक्टर साहब इसमें एक चीज ये भी अर्ज कर दें, व्हाट कॉन्स्टिपेशन एक दिन का भी होता है या 3 दिन का होता है?
3 दिन भी होता है।
उमूमी तौर पर ऐसा ही होता है कि लोग एक दिन का जो है वो ये समझते हैं कि स्टूल पास नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेटेड हो गया,
आज कॉन्स्टिपेशन है मुझे,
वो ये नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन में एटलीस्ट ये कि कम अज कम ये कि 72 आवर्स तक जो है ना आप जो है रफाए हाजत से फारिग नहीं होते हैं तो फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की तारीफ में आप इसको लेके आ सकते हैं। अदरवाइज उसको एक दिन के ऊपर आप लग्जेटिव वगैरह यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर रहता है इसमें। लेकिन इसमें जैसे सलमान भाई ने कहा कि कॉज क्या है आपकी, कॉज ये है कि आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है या डाइट पैटर्न है वो आपका ठीक नहीं है तभी आपको कॉन्स्टिपेशन
हो रही है।
और जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल में एक हिस्सा पानी भी आ जाता है। इसी तरह खुराक और पानी को मिला के अगर अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, प्रॉपर पानी इस्तेमाल कर लेते हैं और गुजा के अंदर जो है फाइबर डाइट वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर लेता हूँ, आपको कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी
इंशाल्लाह।
जब आपकी कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी, लग्जेटिव जो है आप लेने वाले चीजें जो भी हैं वो टेम्पररी तौर पे आपको रिलीफ,
चूरन भी तो आता है ना, ये अक्सर हैबिचुअल हो जाता है लोग,
वो टेम्पररी रिलीफ करता है ना, एक तरह का टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है आपको।
चूरन का तो बोलते हैं वो चूरन खा तो खाना
खत्म हो जाता है, चूरन भी ज्यादा। लास्ट टाइम मुझे याद है हमारे किसी मौजूद में कोई सवाल आया था तो खलील भाई ने बताया था कि वो चूरन का इस्तेमाल भी ज्यादा ना किया जाए, क्यों?
तो वो आते कमजोर होने का हजम हो जाता, हजम कर देता हूँ खाना
जी। डॉक्टर आते हैं खलील भाई तो फिर इंशाल्लाह उनसे मालूम देते हैं
मेरे साथ।
लेकिन पानी का मशवरा उन्होंने भी दिया था कि पानी ज्यादा इस्तेमाल करें तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत।
खलील भाई के इसके हवाले से नहीं, जनरल मार्केट में और भी
मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं,
कब्ज के हवाले से इन चीजों पे ज्यादा आ जाता
है। अगर उसमें वो जो चीजें एक चूरन वगैरह जो आप बता रहे हैं मार्केट में उनकी क्वालिटी क्या है या इसके आइडिया नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पे हम घरों में भी देखते हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो उमूमी तौर पे वो घर की चीजों को किचन में जो चीजें इस्तेमाल होती है उन्हीं को 3-4 चूरन टाइप का बना लेते थे। جس کو عام زبان میں پھکی استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں, تو وہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پھر بہت زیادہ جیسے کہا نا کہ ہیبیچوئل نہیں ہوتا, وقتی طور پہ تو یوز
ایز پر نیڈ ہی استعمال کیا
بالکل, لیکن اس کا ایز سچ اتنا بڑا سائڈ افیکٹ نہیں ہو پائے گا آپ کو اگر آپ اس کو پراپر یوز
اتنا مارکیٹ میں ناقص اویلیبل
وہاں نہیں ہوتا, آپ کو معلوم نہیں ہے کیا چیز ہے کیا
بن رہا ہے.
ہاں بالکل, گھر میں جو چیز ہے وہ کچن میں.
فیس بک پہ ہمارے پاس ایک سوال ہے مرکز الاولیاء سے, غلام یاسین بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا جو مدنی منا ہے وہ تقریباً 7 سال عمر ہے, اور رات میں جو ہے وہ پیشاب کی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہے ان کو, تو اس کے لیے ہمارے کہ کیا کرنا چاہیے.
دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے پہ پریشرائز بہت کر دیا جاتا ہے.
کامل بھائی اسی لیے میں اس پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بچوں کو ڈپریشن کی علامت بھی
بہت زیادہ ہو جاتی
ہے, سائیکولوجیکل میٹر
ڈپریشن.
اچھا
اب آپ کو یہ رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بچے کو کوئی شوق تو ہے نہیں,
ٹھیک ہے بالکل,
یہ اور نہ اس کو عادت ہے, ظاہر گھر والے اس کو ٹرین بھی کر رہے ہوں گے, اٹھا بھی رہے ہوں گے, لیکن بچوں کی سائیکالوجی تھوڑی رول آؤٹ کر لیں کہ کوئی اسٹریس نہیں ہے, اس کے ساتھ اوپر کا جو بیٹا ہے بیٹی جو بھی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, اسکول کے پریشرز نہیں ہے, 7 سال ینگ ایج.
یہ یہ
سائیکیٹرسٹ سے اگر
یہ بھی ریزن, ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے انٹرنلی جو اپنے معاملات ہیں اس کو رول آؤٹ کر لیں, ماحول کس قسم کا مل رہا ہے وہ کر لیں. دوسرا جب یہ چیز ہو گئی ہے تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں کہ آپ اس بچے پہ پریشر نہ ڈالیں کہ اس کو بعض اوقات برا بلا کہا جاتا ہے کہ یار آپ یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا, تو الٹیمیٹلی وہ اگر ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوگا تو وہ مزید اور زیادہ ڈپریسو اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور زیادہ پرابلم میں چلا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر وہ ایسی عادت میں پڑا ہوا ہے بچہ تو بڑے پیار محبت سے اسی کے ساتھ سمجھائیں, اس کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اسی کے ساتھ بولے چلے آپ یہ بستر صاف کروائیں,
یہ بھی کر لیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے پانی جوس وغیرہ یہ چیزیں بند کرتے ہیں,
بالکل بند کی جا سکتی ہیں,
سونے پہ سے پہلے ایک دفعہ کوشش کرا دیں یہ اگر جتنا ہو
سکے, یقیناً کروائے رہے ہوں گے والدین اپنی طرف سے جو کوششیں کروا رہے ہوں گے, اور اس کے باوجود بھی ہو تو پیڈیاٹریشین سے مل کے اس کی دوا وغیرہ اویلیبل ہے.
ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو بستر وغیرہ میں پیشاب کر دیتے ہیں تو مسانے کی کمزوری کے مسانہ جو ہے پیشاب کو روک نہیں پاتا,
یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے.
تو اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیشاب روک روک کر بعض وقت مسانے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی
ہے. خیر یہ بھی بےچارا 7 سال کا بچہ ہے, اب یہ بچوں میں عادت شاید ہو یا نہ ہو ضروری
ہے, بچوں میں روکنے کی عادت
ہوتی ہے کہ اسکول کے اندر,
اسکول میں بچے جو ہے نا کافی روکتے ہیں کہ ان کو جانا نہ پڑے, یا ٹیچرز کی طرف سے سختی ہوتی ہے کہ بار بار جانے کی, مطلب یہ بھی موسٹ
مدارس میں یا
مدارس
اسکول وغیرہ
ایسا دونوں طرف ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے وہ بچہ جانا چاہتا ہے مگر اس
کو, میرے خیال میں ہمیں اساتذہ کو اور ٹیچرز اسکول ٹیچرز کو جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو بچوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں ریلیز دینا چاہیے, لیکن بہت سے بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ بار بار کلاس سے باہر جانے کے لیے بھی کرتے ہیں.
اس میں دیکھیں شاہ رخ بھائی, استاد ہے نا, استاد کو آئیڈیا ہو جاتا ہے,
بالکل
ایکسپیرینس آدمی ہوتے ہیں, سارے کے سارے تجربے کار ہوتے ہیں, اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو آدمی کے ایکسپریشن ہی بتا دیتے ہیں کہ واقعی وہ
پتا چل رہا ہے. ایک سوال ہے ہمارے پاس فیس بک پہ مدنی منی کے بارے میں ہے, ان کا پیٹ جو ہے وہ سوج جاتا ہے, کہہ رہے ہیں مطلب پھول جاتا ہوگا, سوجنا تو خیر غالباً نہ استعمال کیا جائے,
ایج امپورٹنٹ ہے, دیکھا
ایج انہوں نے نہیں لکھی. ایج
اس میں وہ جو پہلے سوال تھا اس کا ادھورا رہ گیا تھا, اس کا ایک جواب عرض کر دیتا ہوں. ایسے کوئی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جن کا پیشاب جیسے رک نہیں پاتا, رات میں بستر میں نکل جائے, یا بڑے ہیں بار بار لگتا ہے پیشاب, تو ان کے لیے ایک بہت ہی آسان سا علاج ہے, اگر اپنے طبیب کے مشورے سے یہ کریں تو انہیں اچھا خاصا انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, کہ اخروٹ
جی
گھروں میں استعمال ہوتا ہے اخروٹ, اور اسی طرح سے سفید تل,
سفید تل ٹھیک ہے,
اور تیسری چیز ہے کوکونٹ کا پاؤڈر, جو یہ ناریل کا پاؤڈر جو ہوتا ہے
ٹھیک ہے,
پسا ہوا ناریل, یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے اور اس کو پیس کے رکھ لیں, ناریل تو خیر پسا ہوا ہی ہوتا ہے, دوسری دو چیزوں کو آپ مزید باریک کر لیں, تل کو اور اخروٹ کو پیس لیں, تو پھر ایک ایک چمچ جو ہے صبح شام استعمال کیا جائے, تقریباً 6-6 گرام بچوں کو مزید آدھا آدھا دے دیں, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل مسانے کی کمزوری وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے. اگر مسانے کی کمزوری کے سبب
اوپر پانی پینا ہے یا بچہ چبا لے اس کو
جیسے چاہے لے,
جیسے چاہے لے, ठीक है।
अच्छा इसमें एक चीज मेरे अभी जहन में आई है कि ये चीज ये ना समझेंगे कहीं वो जो मदनी मुन्ने छोटे मदनी मुन्ने होते हैं वो भी बार बार बिस्तर में पेशाब कर दे
बड़ों को भी मसला
कहीं उनके साथ ये ना तरकीब बनाना शुरू कर दे वो बच्चों की हैबिट
मर्ज बहुत छोटे बच्चों ने
कॉल की थी इनकी उम्र थी 7 साल
जी जो
7 साल पे ही तश्वीश है
जी
इससे पहले अगर इसे 4 साल 5 साल पे हो रहा है तो उसको ट्रेन कर सकते हैं
ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा खलील भाई एक सवाल आया था हमारे पास बच्चे के दिल में सुराख तो उन्होंने जो है वो रूहानी इलाज के लिए इसमें जो है वो गुजारिश की है आपकी तरफ सवाल
अल्लाह
इसके लिए एक तो इस चीज से बचने के हवाले से कि इससे बचा जा सके कि आजकल देखा है कि कई ऐसे मरीज मिलते हैं कि दिल में सुराख होता है तो इसके लिए कहा है अतिबा ने कि बही का मुरब्बा ये दिल के लिए बहुत अच्छा है
ठीक है
अगर जो इस्लामी मैंने उम्मीद से होती है अगर इसका इस्तेमाल जारी रखें तो बही का
बही देखने में सेब की तरह होती है
जी इसे सफरजल भी कहा जाता है तो अगर ये इस्तेमाल में रहे तो इससे ये इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल फायदा हासिल है इससे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल दिल के अंदर जो सुराख का जो आरिजा होता है इससे
गालिबन क्या रंग साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है
इसके और भी दीगर फायदे हैं
ये वो लोग इस्तेमाल कर लें कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री आ रही हो
ठीक है
जैसे किसी फैमिली में किसी की हिस्ट्री पॉजिटिव आई किसी इनके दिल में सुराख है या इस तरह का तो वो प्रोफाइलेक्टिक एहतियातन ले लें हर एक के लिए जिम्मन जरूरी नहीं है कि ये इस्तेमाल
अगर जैसे इस्तेमाल भी करें तो अपने करना तो जाहिर बात है कि अपने तबीब के मशवरे से ही है तो इंशाल्लाह इसमें फायदा हासिल होगा रूहानी इलाज अर्ज कर देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 75 times 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जो है जिसके दिल में सुराख हो उसके दिल पर दम किया जाए तो इंशाल्लाह ये इस मर्ज से अफाका हासिल होगा इसी तरह से दिल की घबराहट है या सीने के किसी भी तरह के जो अमराज हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इससे फायदा
अल्लाह ताला आपके बच्चे को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए
और
जो रूहानी इलाज बताया इस पे अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद रखें इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल शिफा हासिल होगी
अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए और दुआ भी करते रहें कि दुआ
आप दुआ भी दुआ मोमिन का
रब्ता कर लें इसके हवाले से तावीज़ात भी होंगे अवेलेबल
जी जी
अच्छा दो कॉल्स हमारे पास रेडी हैं कॉल्स लेते हैं उसके बाद फिर हम अपने सेकंड मौजू की तरफ चलते हैं कि
अभी तो शर्बे इसमें बहुत सारे फायदे ऐसे हैं पानी के लिए रह गए
वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि पानी किस किस्म का इस्तेमाल करें
इंशाल्लाह
वरकतुह
जाने अलमत्तारी गुजरात हिंद से मेरा ये सवाल है मदनी क्लिनिक में कि आवाम में ये मशहूर है कि जो आरओ मशीन यूज करते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए तो इसमें जो है पानी के मखसूस आयरन और कैल्शियम ये सारी चीजें जो है साथ में निकल जाती हैं जो चीजें फिल्टर किया पानी है जो है अब इसके इस्तेमाल से जो ओरिजिनल पानी में जो ताकत या फिर कुव्वत मिलती है वो फिल्टर वाले पानी में नहीं मिलती ऐसा कहना है लोगों का तो क्या ये दुरुस्त है
इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं नेक्स्ट कॉल दीजिएगा
डॉक्टर साहब ये बताएंगे पानी के कम पीने की वजह से सर में दर्द हो रहा हो या रोने की वजह से सर में दर्द हो रहा हो तो उसका क्या इलाज है
ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही था कि पानी किस किस्म का इस्तेमाल किया जाए तो कॉल भी उसी मुनासबत से आ गई है डॉक्टर साहब आरओ प्लांट्स का आजकल बहुत ज्यादा जो है वो आम तौर पे
रुझान
हो चुका है और एक एक इलाके में एक एक मोहल्ले में तकरीबन दो दो तीन तीन
आरओ प्लांट सुनते थे फिल्टर अभी आगे आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस
जी
ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसके फायदे होंगे
फायदे इसमें बेसिकली इसमें जो है अगर मैं अपनी कुछ मालूमात इसमें इनपुट करूं क्योंकि मेरा कुछ इससे माजी में ताल्लुक रहा है इस हवाले से कि मैंने इसको अच्छी तरह की स्टडी किया है आरओ प्लांट्स में बेसिकली होता ये कि पानी के टीडीएस को जो है वो मैनेज किया जा रहा होता है पानी की वेटेज को
टीडीएस से पता ये चलता है कि पानी खारा कितना है
असल में जो नॉर्मली आरओ प्लांट की जो एक्चुअल थीम है ना उसमें जमीन का पानी इस्तेमाल किया जाता है मतलब के नाजरी और जमीन का पानी चूंकि वजन में भारी होता है तो उसके टीडीएस को उसके वेट को नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनको मिनरल्स कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज भी होती है और इन मिनरल्स को मिलाने के बाद पानी के वेट को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है एक आम मीठे पानी की सूरत में उसको बनाया जाता है इसके हर बैच को टेस्ट करवाते हैं होता यह है कि जब एक दफा पानी टैंक में फिल होता है फिल होने के बाद जब अपना प्रोसेस पूरा करता है मिनरल्स का और उसमें बाकायदा उसको यूवी रेज के जरिए भी जर्म्स को किल किया जाता है तो उसके अंदर नॉर्मली उस पानी के मिकदार यानी कितना लीटर पानी आपके टैंक में मौजूद है उस हिसाब से ही उसमें केमिकल्स का अंदराज किया जाता है ताकि उस पानी के वेट को मुनासिब किया जा सके। लेकिन नॉर्मली देखा यह गया है कि जो गली मोहल्लों में आरओ प्लांट्स लगे होते हैं उसके अंदर जो टैंक होता है उस टैंक के अंदर जब पानी एक दफा भरा जाता है तो दोबारा उसको कम्प्लीटली फ्लश आउट नहीं किया जाता, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिकदार पानी की रह जाती है, फिर एक नया पानी उसमें भर दिया जाता है और उसमें फिर दोबारा से उसी पानी की मिकदार के हिसाब से केमिकल को मिनरल्स को शामिल किया जाता है जो कि उस पानी के वेटेज को नॉर्मलाइज करते हैं। अब होता यह है कि जब उसमें थोड़ा सा पानी उसकी लेयर में बच गया तो उसके बाद जब उसमें भी केमिकल मौजूद था, अब दोबारा जब पानी भरा गया और उसके कुल मिकदार के हिसाब से उसमें केमिकल इन किया गया उसके पानी की वेटेज को नॉर्मल करने के लिए, तो वो हुआ यह कि पानी की वेटेज अपनी नॉर्मल से ज्यादा नीचे गिर गई, क्यों, पहले से भी पानी मौजूद था और उसमें भी केमिकल मौजूद था। इस वजह से पानी की जो रिक्वायर्ड टीडीएस होती है वो अपनी टीडीएस की मिकदार से नीचे चली जाती है और इसके नीचे जाने से सबसे पहला जो इसका इफेक्ट होता है वो किडनी पे होता है,
गुर्दे में होता
है, सबसे पहले किडनी इन्फेक्शन का मर्ज इसमें लाहक होता है। अब चूंकि आगे मेडिकल की इन्वॉल्वमेंट है तो किडनी के इन्फेक्शन कितना नुकसान है ये आप बताएं।
सर ये जो चीज अभी आपने बताया ना, पानी आप जमीन का लेते हैं तो ये खारा पानी कहलाता है, इसको हम लोग को बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर बहुत सारे वो केमिकल्स इस तरह के होते हैं, टॉक्सिन भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं। अब वो मेटल अगर आप जैसे आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, ये टॉक्सिक केमिकल्स है, ये अगर चलेगा ये नेफ्रोजेनिक यानी किडनी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, कर भी सकते हैं, हो भी रहे होते हैं। किडनी स्टोन के एपिसोड पहले इतने ज्यादा नहीं होते थे लेकिन अभी किडनी स्टोन पथरी हो जाना बहुत ज्यादा कॉमन है, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी शट डाउन ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। ये पहले अमूमन ये डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के मरीज में होता था लेकिन अभी एक यंग एज के अंदर किडनी फेलियर से रिलेटेड।
अच्छा, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हो सकता है कि कहीं ऐसा नाजरीन भी हमारा
शारूबा
देख रहे हो जो आरओ प्लांट्स लगाते हो या उनके आरओ प्लांट्स हो तो उनकी दलाजारी ना हो, तो उनके लिए एक नाकिस बल्कि कामिल मदनी मशवरा है कि आप जब भी अपने पानी का नेक्स्ट बैच तैयार करने लगे तो मेक श्योर कर लें कि आप अपने टैंक को कम्प्लीटली फ्लश करें। जिस टैंक में आपका पानी फिल होता है फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप जिस टैंक में पानी भरते हैं उसको सबसे पहले कम्प्लीटली फ्लश आउट कर दें, उसको खाली कर दें, उसके बाद उसमें नया पानी भरें ताकि उसमें जो केमिकल की मिकदार जो आप मिनरल्स मिलाएं वो मुनासिब मिकदार में ही मिलाएंगे लेकिन वो प्रॉपरली अपने पर्पज के मुताबिक काम करें। जी डॉक्टर साहब,
एक कप का वो जो मिनरल वाटर खरीद के पी रहा है
जी,
और डॉक्टर साहब वो लोग जो नहीं खरीद के पी रहे हैं वो जो टैप वाटर पी रहे हैं या लाइन का पानी पी रहे हैं वो
सबसे बेस्ट। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूं और ये इन्फेक्शन भी मेरी फैमिली में हो चुका है, कई केसेस हो चुके हैं, तो जो भी माहिर डॉक्टर को दिखाया जाता है उनका एक मशवरा होता है कि आप तमाम मिनरल वाटर को छोड़ दें, अपने घर में पानी को बॉयल करके पिए।
देखिए किसी हद तक तो ये बात सही है कि बॉयल करने से एक तो अपने सामने होता है और काफी हद तक तसल्ली हो जाती है आदमी को, लेकिन एक छोटा सा उसमें एक ड्रॉबैक आता है कि बॉयल करने से जो एक्चुअल उसके अंदर एफिशिएंसी होती है उसकी वो कम हो जाती है पानी की, यानी कि उसके अंदर वो चीजें वो अफादियत पानी के अंदर वो चीज नहीं रहती जो आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इस वक्त पानी के अंदर वो जरासीम है जिसको बॉयल करने से भी खत्म नहीं होते।
ठीक है,
तीन चार ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए।
तो इसका कोई वक्त होगा मेरे ख्याल में,
अभी पानी तो दे आरओ प्लांट इन्होंने मना कर दिया, बॉइलिंग आपने मना कर दिया।
बॉइलिंग के लिए मना नहीं कर रहे हम, बॉइलिंग के लिए
रिकमेंडेड है,
कह रहे हैं कि आप करें बिल्कुल करें, लेकिन उसमें वो अफादियत आप हासिल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से होता है। लेकिन उससे बेहतर होता है कि आप एक अनदेखी चीज जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है क्या है क्या
है, बेहतर है
उससे
एक साफ पानी आपको टैप से भर के उसको बॉयल कर रहे हैं, एटलीस्ट आप डाउट से तो दूर हो जाते हैं।
बिल्कुल, और उसमें एक काम और भी कर सकते हैं जैसे बॉयल करने के बाद ये है कि उम्मीदी तौर पर एक होती है फिटकरी वगैरह की चीज जो होती है हल्का सा उसको आप घर में रखते हैं, आप हल्का सा उसको टच कर देंगे तो वो भी आपका जो है दस तो वो भी काफी हद तक आपकी जो है पानी प्योरीफाई बन सकता है।
मेरे ख्याल में मटके का इस्तेमाल
मैं तो रिकमेंड करता
हूं। जी मटके का इस्तेमाल मैंने सुना है, अगर
मैं
आप भी और खलील भाई दोनों इसकी जो है वजाहत फरमाएं कि मटके की जो मट्टी होती है बेसिकली चिकनी मट्टी जो इस्तेमाल होती है खसूसी वो उसकी शायद ये कोई क्वालिटी है कि वो ऐसे पार्टिकल्स को जो है वो नीचे बिठा देती है।
अगर सर्दियों के अंदर अगर आप मटके का पानी पिएंगे तो थोड़ा नीम गर्म होगा, गर्मियों में पिएंगे तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो ठंडा होता है, डिजोल्व तो कर लेता है मट्टी, वो ले लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, क्योंकि मट्टी को अगर आप छह या पाँच छह महीने के बाद अगर आपने कभी खाली नहीं किया, खाली करके अगर आप चेक कर लें उसको, तो वो सब पता लग जाएगा नीचे कितने लेयर हैं,
मटेरियल होगी,
वो सारे एल्गे जितनी भी जो चीजें होती हैं वो स्टक अप हो जाती हैं, वो एब्जॉर्ब
पानी को बॉइल करने के। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में जो वक्त कहा गया है कि मेरा कुछ किस्म का मामला हो चुका है इन्फेक्शन का, तो उसमें जो डॉक्टर साहब ने हमें तजवीज किया था वो कहा था कि एटलीस्ट 15 मिनट्स आपने पानी को बॉइल करना है, और फुल आंच पे जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी निशानी ये होगी कि पानी के अंदर बॉइल अच्छा आएगा और काफी धुआं निकलना शुरू होगा, तो वो निशानदेही होगा कि आपका पानी अब प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर गर्म हो चुका है
जी।
मेरे ख्याल में ये भी अगर कर लिया जाए,
देखिए एक आम आदमी के लिए यही एक वाहिद जरिया है
जी,
हर आदमी आरओ नहीं अफोर्ड कर सकता।
डॉक्टर साहब ये भी तो कोई श्योर नहीं ना कि जो पानी आपका मार्केट में अवेलेबल है वो 100%
सही
है।
हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
सबके लिए जरूरी है,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने खास तबके की बात की कि वो मिनरल वाटर्स के ऊपर चलते हैं,
अभी उनको तो सेफ ले लिया ना, कि मिसाल के
तौर पर उनको भी तो आप नहीं कह सकते ना कि वो 100% है।
हाँ वो भी 100%
है,
वो भी कैटेगराइज हो जाता है ना कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी है तो उसकी कीमत इतनी है कि वो हमारी मेजोरिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकती,
दिल्कुल,
उसको
दिल्कुल।
तो वो नॉर्मली बिलो एवरेज प्राइसिंग जो होती है
एक से नीचे जाते हैं, 80% लोग ये पानी ही
नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक चीज और ये है कि जैसे आप किसी भी जगह पे कुआं खोदते हैं पानी के लिए कि पानी हम यहाँ से हासिल कर लें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि हम उसको निकाल के पी के चेक कर लेते हैं कि खारा या
मीठा है,
ठीक है, हमारे पास क्राइटेरिया यही है,
मतलब हमारे
मीठा निकल गया तो पानी अच्छा है,
अपने अंदर ही एक लैब
लगी है, सिर्फ नहीं जाते चेक करने के लिए कि ये पीने के काबिल है, मीठा तो है लेकिन पीने के काबिल है या नहीं है इसको चेक कराना बहुत जरूरी होता है। कि आपने अगर आपके यहाँ से पानी अच्छा मीठा निकल आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पहले चेक करवाएं कि आया वो उसका, जैसे आपने टीडीएस के हवाले से बात की, टीडीएस इसका प्रॉपर है या नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट तो उसमें शामिल नहीं है जिसकी वजह से आपके या जो भी आप जो लोग भी वो पानी इस्तेमाल कर
रहे
हैं, पूरे अपार्टमेंट्स हैं, पूरे का पूरा इसमें जो है कॉम्प्लेक्सेस यूज चल रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी फैमिलीज, एक फैमिलीज नहीं पता नहीं कितनी फैमिलीज इस्तेमाल कर रही होती हैं उस चीज को, तो ये ना हो कि किसी बड़े मसले की तरफ आप
साहब चले पानी आपने निकाले। फेसबुक पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक है कि इनकी एज है 25 years है और इनकी किडनी में जो है वो 6 mm की जो है वो पथरियां हैं, तो इसके लिए रूहानी इलाज तलब कर रही है। इसके बाद एक दूसरा सवाल है कि खाना खाने के बाद पानी पीने से कैंसर के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, खाना खाने में कब पानी पीना चाहिए और कब नहीं, पहला सवाल आप
देखें। एक कॉलर का तो पहले कॉल सवाल का जवाब रह गया था कि पानी की कमी की वजह से क्या क्या मामला हो,
ठीक है,
पानी कम पीने की वजह से तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम मिल जाते हैं, पट्ठों
की
जाती है, और ये जानना चाह रहे थे कि दिमाग के अंदर भी पानी कम पीने की वजह से दिमाग की परफॉर्मेंस, काम करने की दिमागी सलाहियत वो भी मुतासर,
पानी
ना पीने की कमी की वजह सर में दर्द की शिकायत
जी,
तो ये हो सकती है, सीजर भी हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें पानी की कमी की
वजह से बोला ना 80% ब्रेन इज वाटर,
अगर पानी कम होगा बॉडी का दिमाग के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन जितने वो मुतासर हो जाएंगे,
पूरा फंक्शन नहीं कर पाएगा।
दूसरे जो कॉलर है इन्होंने जो पूछा है डॉक्टर साहब की ये 6 mm का स्टोन है, इस साइज के जो स्टोन है इसके ट्रीटमेंट ही वाटर थेरेपी
है, इसका इलाज ही पानी, आप पानी जितना ज्यादा पियेंगे
फ्लश आउट हो जाएगा,
बहुत छोटा स्टोन है, बिल्कुल नुक्ते के बराबर
वो छोटा सा स्टोन है, तो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, पानी किसी भी सूरत में पिया जा सकता है, यानी आप शरबत की सूरत में भी पी सकते हैं, आप किसी और चीज की सूरत,
शरबत मयारी,
शरबत घर का,
शरबत
पानी पिला दे,
बाहर ना हो कि आप बाहर
पानी पिला दे,
ज्यादा पानी पीना शुरू कर,
ज्यादा पानी पिला दे,
ज्यादा पानी पिए तो ज्यादा बेहतर है,
मतलब लिक्विड किसी भी सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये है कि इंशाल्लाह जल उसमें काफी हद तक फायदा होगा, बाकी रूहानी इलाज इंशाल्लाह खलील भाई आज करते हैं
जी। अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाए अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके, इनकी मुश्किलें आसान फरमाए, और इनके लिए रूहानी इलाज मेरे आका शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू और आलिया की तरफ से अता करदा, आपके रिसाले बीमार आबिद में भी ये मौजूद है कि 46 times 46 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 46 मरतबा किसी सादे कागज पर आप लिख लीजिए और फिर इसे किसी बोतल वगैरह में डाल दें या किसी बर्तन में डाल लें और इसका पानी जो है फिर पिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पित्ते में या गुर्दे में पथरी होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रिजा रिजा होकर निकल जाएगी
इंशाअल्लाह,
तो इसको आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाएगा। इसी तरह की कोई भी जैसे पित्ता है, मसाना है, गुर्दे और पित्ते की जो पथरी है, इस तरह के मरीज पानी अगर यही वाला ज्यादा पीते रहे तो इंशाअल्लाह दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे
इंशाअल्लाह।
दम क्या होगा?
दम ये जो तावीज वाला पानी, ये भी साथ चला,
ये भी साथ चला,
नहीं पानी और बढ़ाते रहे मिलाते रहे,
ठीक है
इतना
इंशाल्लाह
डबल एक्शन होंगे,
डबल एक्शन।
एक कॉलर थे, एक कॉलर पूछना चाह रहे थे खाने से पहले पानी पीना, खाने के बाद। खाने से पहले पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है, तो खाली पेट होता है तो पानी जा रहा होता है, तो पेट के अंदर जितने भी वो फाजिल मादा वगैरह रहा था वो क्लियर आउट हो जाता है। खाने के बाद पानी नहीं पीना।
इसमें एक पानी के हवाले से, जैसे खाने में पानी के हवाले से, तो एक जो वेट कॉन्शियस लोग हैं,
अच्छा तीन चीजें थी, मैं भी इस पे आना
बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है कि अगर आप बिफोर मील खाने से पहले अगर आप एक गिलास डेढ़ गिलास पानी पी लें और बिटवीन पानी पी लें तो आप इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने में अच्छा खासा वजन कम कर पाएंगे।
फिर इसमें यह भी एक फायदा है कि जैसे डॉक्टर इस हवाले से इनकी तहकीक है कि पानी अगर पहले पिया जाए या फिर काफी देर के बाद, जैसे आधे एक घंटे के बाद किया जाए, तो फिर ये होता है कि मैदे में जाने के बाद इसका सफर जो है आंतों की तरफ बआसानी
बढ़ता है
और इसके ज्यादा फायदे हासिल किए जा सकते हैं।
देखिए जैसे असल में जो है बाद में पानी पीने का एक लॉजिकल नुकसान ये भी होता है कि शुरू में तो पानी आपने पी लिया तो पेट आपका खाली है तो वो जो क्लियर आउट कर
देता है, साफ कर देता है इसको।
अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर पेट मैदे के अंदर एसिडिटी तेजाबियत हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है,
ठीक है।
ये एसिडिटी बहुत जरूरी है,
ठीक है।
इसका पीएच होता है ऑलमोस्ट लाइक 3.5 to 4 होता है। इतना पीएच का मतलब ही नहीं, इतनी तेजाबियत ये यूं जरूरी है। अगर ये तेजाबियत ना हो तो खाना गलेगा नहीं,
खाना गलेगा नहीं,
हजम नहीं होगा।
ये कुदरत का निजाम होता है,
जिस वक्त वो चबाया भी अगर आपने नहीं तो वो गल जाएगा,
गल जाएगा।
अगर इस पीएच के ऊपर अगर आपने खाने के बाद पानी पी लिया तो पीएच आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा 3.5 से वो 5 या पानी से, वो जो आपको जो खाना खाया है जो काइम जिसको बोलते हैं हम लोग ना, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
बिल्कुल
एंजाइम को जो काम करने, जो हाजमे के जो एंजाइम है जो काम करने के लिए जरूरी है हजम करने के लिए उसके लिए पीएच की रिक्वायरमेंट 3.3 होता है, 4 पीएच होता है। अच्छा इससे ये काम हो रहा
है। सलोन में थोड़ी सी एक और रहनुमाई फरमा दीजिए कि आपने जो पीएच के हवाले से बात की है, ठंडा पानी क्या के रोल होगा अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं?
अच्छा इसमें तो फिर एक ठंडा पानी के बाद इसके साथ एक और भी चीज
भी आने वाली
है। एग्जैक्टली, तो अब उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब इंटरनली क्या मसाइल उसके? एक तो आपने नॉर्मल पानी के हवाले से बात की कि आपने पानी खाना खाने के फौरन बाद पी लिया तो उसका पीएच में कितना फर्क आ जाता है और आपकी डाइजेशन में कितनी प्रॉब्लम होती है, और ठंडा पानी पीने की वजह से और ज्यादा इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी,
आप अंदाजा कर ले। यूं समझ लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन यानी हजम होने का प्रोसेस है, उसमें पानी भी रिक्वायर्ड है, आपका एसिडिटी यानी पीएच भी रिक्वायर्ड है और पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रिक्वायर्ड है। इफ पानी लो टेम्परेचर के ऊपर हुआ यानी बहुत ज्यादा ठंडा हुआ तो वो आपका केमिकल प्रोसेस
कंप्लीट। गर्मियां भी आने वाली है तो नॉर्मली लोगों का होता है ये कि वो फ्रीजर में पानी रखते हैं,
एग्जैक्टली,
और वही पानी इस्तेमाल करते हैं।
इसमें देखिए होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद स्टमक में जाती है चीज, तो आपके स्टमक के अंदर से कुछ सीक्रेशंस निकलती है, डाइजेस्टिव मटेरियल्स निकलते हैं जो उसको डाइजेशन में उसको प्रॉपर मदद कर रहे होते हैं। आप एक सिंपल सा एक जहन में रखें, कोई भी अगर ठंडी चीज अगर आपके हाथ में चले जाती है तो आपका हाथ थोड़ा श्रिंक होने लग जाता है, स्किन थोड़ी श्रिंक होने लग जाती है, सूखने लग जाती है। इसी तरह आप एक अंदाजा करेंगे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, इंटरनली एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है आपने, उस टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है, आप उस टेम्परेचर के अंदर आप तकरीबन माइनस डिग्री का पानी जो है आप बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, तो आप ये सोचेंगे जब वो अंदर जाएगा तो अंदर की जो भी उसकी वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उसके अंदर सुकड़ पैदा हो जाएगी, तो उसका काम करने की सलाहियत है वो उस अंदाज में नहीं रह पाती, जिसकी वजह से वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, फिर सो मसाइल खड़े होते हैं, गैस के प्रॉब्लम।
ठंडा पानी पिला रहे हैं आवाम तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी जाती है,
कोल्ड ड्रिंक तो फिर
कभी
कोल्ड ड्रिंक तो मेरे ख्याल में नहीं पिए तो बेहतर है।
अभी खलील
भाई की तरफ चलते हैं, खलील भाई हमारे लिए कोई इलाज लेकर आए हैं, शरबत लाए हैं, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। जी खलील भाई,
शरबत तो खैर नहीं है, शरबत कह भी सकते हैं। पानी हमें किस तरह से पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए, किस अंदाज से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो हमारे डॉक्टर साहिबान ने रहनुमाई फरमाई, अल्लाह पाक ने जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्ज करना चाहूंगा कि बाद ऐसे अफराद होते हैं कि जिन्हें एक बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जितना पानी पीना चाहिए उसके मुताबिक पी भी रहे होते हैं, फिर भी जो है प्यास की बहुत ज्यादा उन्हें कसरत महसूस होती है, पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। तो पानी वैसे तो यही है कि प्यास
के मुताबिक नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक पीना चाहिए, कि प्यास लगे ना लगे हमें एक जरूरत के मुताबिक जितना पीना चाहिए जरूर उतना पीना चाहिए। फिर भी अगर इससे हटकर अगर कोई ऐसा मर्ज है कि जिसकी वजह से अभी प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके हवाले से एक घरेलू इलाज आपको बयान करना था। तो पहले तो यही हमारा अलमिया है कि हम पानी पीते ही कम है, तो ये तो खैर किसी किसी के साथ ऐसा होता होगा, मगर चूंकि हमारा मौजू पानी था इस हवाले से मैंने सोचा कि ये आपको घरेलू इलाज बयान कर दूं। हमारे सामने तीन चीजें हैं, जरिश्क आप देख रहे हैं छोटे छोटे दाने हैं किशमिश की तरह, इसे जरिश्क कहा जाता है। तो नंबर एक ये आपने तकरीबन 10 ग्राम लेने हैं, और दूसरी चीज है इमली, और इमली भी आपने तकरीबन 10 ग्राम लेनी है, और तीसरी चीज जो है ये आलू बुखारा, ये आपने तकरीबन 5 दाने लेने हैं आलू बुखारे के 5 दाने। तो वैसे तो इमली और आलू बुखारे का शरबत भी मिलता है, डॉक्टर साहब ने जो कहा तो ये शरबत ही बन जाएगा। इसका तरीका कार ये है कि रात को एक गिलास पानी के अंदर ये तीनों चीजों को बताई हुई मकदार 10-10 ग्राम दोनों चीजें और बाकी आलू बुखारे के 5 दाने इसको भिगो दिया जाए साफ करके धो के, और सुबह जो है इसको मल छान कर पी लिया जाए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो मुंह का जायका जैसे कड़वा रहता है या बाजों का बीपी लो रहता है तो उस हवाले से, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जिगर के हवाले से जिगर में बहुत ज्यादा हिद्दत होती है, बहुत ज्यादा जैसे जिगर की गर्मी कह देते हैं, तो उस हवाले से इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो प्यास लगती है तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल से फायदा हासिल होगा। और बाद वो अफराद होते हैं कि जिन्हें प्यास लगती नहीं
है,
तो वो अगर चाहें तो एक बनी बनाई दवा आती है जिसे कहा जाता है जवारिश जालिनूस,
ठीक है,
तो किसी भी अच्छी कंपनी की बनी हुई आप ले लीजिए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जिगर के फैल में भी कमजोरी हो जाती है, मैदे की खराबी की वजह से भी ऐसा होता है, तो एक एक चम्मच छोटा वाला खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये मामला तो अपने मामूल पर आएंगे, तो ये जो प्यास ना लगने का मामला इंशाल्लाह ये बेहतर हो।
सर के नाज़रीन हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हो जाता है, और सिलसिले का अख्तिताम से पहले ये अर्ज कर दूं कि माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कई सवाल मेरे पास इस वक्त फेसबुक पे आना शुरू हो गए हैं और कॉल्स भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे बेहतरीन नुस्खा जो हर बार हम रिपीट करते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है, और अपने खाने पीने के मामला में बहुत ही ज्यादा एहतियात, हर चीज को मियाना रबी के साथ इस्तेमाल करें, और मदनी चैनल का मकबूल अहम सिलसिला मदनी मुजाकरा जरूर देखा करें, क्योंकि हमारे शेख तरीकत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ाज़ी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहु आलिया ऐसे प्यारे प्यारे नुस्खे अता फरमाते हैं कि वो हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन सेहतियाब जिंदगी गुजारने के नुस्खे होते हैं, हमारी जाहिरी और बातनी इस्लाह का सामान होता है। तो मदनी मुजाकरा भी जरूर देखा करें और मदनी चैनल के तमाम ही सिलसिले देखा करें, इंशाल्लाह एक मुकम्मल इस्लाह का सामान होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर मरी।